السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. جی، الحمدللہ، میں بھی خیریت سے ہوں. انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں اپنا تجوید کا لیسن. چلیں، اب جلدی سے بتائیے ہم نے کہاں تک مخارج کور کر لیے. جی، اقص الحلق. اوکے، صرف حمزہ انہا کیا تھا؟ اوکے، اچھا، چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ صحیح. انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں، آگے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے لیٹر سے ریلیٹڈ تو آپ کر سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جن کو ہم نے ڈسکس کیا وہ تھے الجوف کے لیٹرز، حروف الہوائیہ، اور اس کے بعد جو لیٹرز ہم نے ڈسکس کیے وہ حروف الحلقی میں سے حمزہ انہا. حروف الحلقی میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تین پورشنز ہیں. ایک تو ہے اقص الحلق، سب سے ڈیپسٹ پارٹ آف تھروٹ، جس سے دو لیٹرز آتے ہیں حمزہ انہا، اور انہیں ہم ڈسکس کر چکے. آپ لوگوں نے پریکٹس کیا، آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ کس طرح سے ہم لیٹر کے مخرج کو فائنڈ آؤٹ کریں گے اور لیٹرز کی پریکٹس کریں گے. جی، الحمدللہ. اوکے، آج ہم پڑھتے ہیں وسط الحلق، حلق کا درمیان والا حصہ. حلق کے درمیان والے حصے سے بھی دو لیٹرز آتے ہیں، ح ان عین. اب یہ دونوں ہی لیٹرز تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہیں، اور ڈیفیکلٹ ان اے سینس اس لیے کیونکہ ہم ان کو اپنی کامن لینگویج میں یوز نہیں کرتے. نہ تو یہ اردو میں لیٹرز بولے جاتے ہیں اور نہ ہی یہ انگلش میں لیٹرز بولے جاتے ہیں. لیٹر ح ان عین ہم اپنی کامن زبان کے اندر استعمال نہیں کرتے، اس لیے عربک میں سب سے زیادہ جو اسٹوڈینٹس کو پرابلم ہوتی ہے وہ ان دو لیٹرز میں مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ہم، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم آسان لیٹر سے سٹارٹ کریں گے، تو ہم لیٹر ح سے شروع کریں گے جو کہ کمپیریٹیولی آئین کے، اگر ہم دونوں لیٹرز کا کمپیریزن کریں تو آئین کے نسبت، یعنی ح جو ہے وہ تھوڑا آسان ہے یا اس کو اسٹوڈینٹس جلدی اچیو کر لیتے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو آپ کو ساؤنڈ کو فوکس کر کے، یعنی یہ ساؤنڈ نکالنی ہے جو کہ درمیان حلق کے درمیان والے حصے سے آ رہی ہے، اور اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ڈاؤن نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے بعض اسٹوڈینٹس اس کو بہت زیادہ دبا کے نیچے سے نکال رہے ہوتے، یہ آلموسٹ چن کے پیرل آپ کے جو پارٹ آف تھروٹ ہے ادھر سے یہ آ رہی ہوتی ہے ساؤنڈ، اور اسی طرح سے آئین بھی. اس لیٹر کے اندر، یعنی جیسے ہم جب ہا کو پریکٹس کرتے ہیں تو کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور سب سے پہلے یہ کہ آپ کی جو ٹنگ کی پوزیشن ہے وہ بالکل سٹریٹ ہونی چاہیے. آپ کو ٹنگ کے کسی بھی پارٹ میں ایکسٹرا پریشر فیل نہ ہو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو حلق کا سب سے اوپر والا حصہ ہے یا زبان کا سب سے آخر والا حصہ ہے وہاں پہ آپ کو کچھ دباؤ، پریشر اور کچھ اس طرح کی فیلنگ آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایریا نا آپ کا زبان کا، وہ ایریا آپ کا اوپر کی طرف اٹھ رہا ہے، لائک یوں، یعنی آپ کو منہ کے اندر کوئی پریشر فیل نہ ہو. بالکل ریلیکس کر کے ٹنگ کو اسٹریٹ کریں، اور پھر آپ اچھی ایئر کے ساتھ آپ نے لیٹر کو باہر کی طرف نکالنے. ٹھیک ہے، ساؤنڈ اس کی کیا ہوگی، باہر کی طرف آئے گی، اندر کی طرف آپ نے اس کو دبانا نہیں ہے. फिर इसी तरह से एक तो ये कि हम इसमें टंग का ध्यान रखेंगे कि आपकी टंग बिल्कुल स्ट्रेट हो, दूसरा ये कि आपने ना इसमें एयर को, अच्छा एयर को ब्लो करना है। अब या जैसे अगर हम सिर्फ लेटर को प्रैक्टिस करें हैं तो टाइम दें इसको, आही आहू, ठीक है, इस तरह से थोड़ा टाइम देंगे तो उसकी रनिंग या उसकी साउंड अच्छी आएगी। फिर इसी तरह से अगर हम यानी अगर आपका हा जो है वो बेहतर हो गया है तो अब आप इस एरिया को फील करें। जब आप आह कहते हैं तो आपको फील होगा कि हलक का एक हिस्सा आपस में एक दूसरे के क्लोज आ रहा है, यानी आप उसे थोड़ा सा प्रेस कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हिट नहीं आ रहा, लेकिन एक पार्ट है थ्रोट का जो कि आपस में एक दूसरे के करीब आ रहा है। अब आपने आइन के लिए उसी एरिया को इस्तेमाल करना है, ठीक है। और मैंने जैसे आपको बताया कि साउंड बहुत स्मूथली बाहर की तरफ आती है, आपने उसे अंदर की तरफ प्रेस नहीं करना, तो आइन के लिए भी आपने यही कुछ करना है, यानी उसी सेम एरिया को प्रेस करें और फिर साउंड भी जो डायरेक्शन है उसकी वो बाहर की तरफ होगी, ठीक है, और टंग आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होगी आइन के लिए। आइन के अंदर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं, यानी वो आइन की एक बेहतर साउंड नहीं निकाल पाते, तो उसमें अगर आप इन चीजों को चेक करके प्रैक्टिस रखें तो इंशाल्लाह ये साउंड बेहतर हो जाएगी। यानी एक तो ये कि जैसे बहुत सारे लोगों से मैंने सुना कि वो कहते हैं कि आप आइन को ऐसे बोलें जैसे यू आर सॉल्विंग समथिंग, सो यानी आप किसी चीज को निगल रहे हैं ना उस तरह से, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये तरीका दुरुस्त है, क्योंकि इसमें आप जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन जो साउंड की है ना किसी भी लेटर में वो हलक की तरफ नहीं होती बल्कि वो अपने मखरज से मुंह की जानिब होती है, यानी जो डायरेक्शन है। तो आइन में भी आप अंदर की तरफ साउंड को नहीं लेकर जाएंगे, यानी यू नहीं आ आ यू अंदर की तरफ नहीं, वरना ये बहुत घुटी घुटी अः ये साउंड बहुत घुटी घुटी सी होगी। आपने इसकी साउंड को बहुत स्मूथली बाहर निकालना है, लाइक आओ, तो ये साउंड आपकी बाहर आएगी। टंग आपकी स्ट्रेट है, टंग आप जो है उसको उठने नहीं देंगे। फिर इसी तरह से साउंड आपकी उसी जगह से आ रही है जैसे आ आ, यानी एग्जैक्टली सेम पोजिशन है, जहां से आप हा बोलेंगे वहीं से आप आइन बोलेंगे। जिस तरह हा के लिए आपकी टंग स्ट्रेट होगी बिल्कुल वैसे ही आपकी आइन के लिए टंग स्ट्रेट होगी। सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस आएगा ना वो थोड़ा स्ट्रेंथ ऑफ हिट में है, और इंशाल्लाह ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि ये डिफरेंस क्यों है। यानी आइन में आपको लगेगा कि आपने थोड़ा जरा सख्ती से लगाया एज कंपेयर टू हा, बहुत ज्यादा सख्ती से आइन में भी नहीं लगाते, लेकिन अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो जो स्क्वीज हो रहा है पार्ट थ्रोट का वो आइन में थोड़ा यानी हा की निस्बतन थोड़ा सख्ती से हो रहा है, ठीक है, यानी उसका हेट उसकी जो है स्ट्रेंथ है वो थोड़ी स्ट्रांग है। तो ये डिफरेंस आएगा। और हा में आप एयर ब्लो करते हैं तो आइन में नहीं करते, यानी आ आ आ ये साउंड होगी। फिर आप देखेंगे कि दोनों लेटर्स के अंदर दोनों लेटर्स के अंदर आपने बोलते हुए ये ध्यान रखना है कि आपका लेटर बाउंस ना करे, ठीक है, यानी जब आप हाँ बोल रहे हैं तब भी और जब आप आइन बोल रहे हैं खासतौर पर साकिन में ये लेटर आपका हिलना नहीं चाहिए। आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा गला जो है वो खराब है तो मुझे बार बार उसको वो करना पड़े, आमीन इंशाल्लाह। तो इसके अंदर जो है आपने ना इसका थोड़ा ध्यान रखना है कि लेटर आपका फॉरन मूव ना करे, ठीक है। जैसे अगर आप हा पर हैं तो आप हा के मखरज के ऊपर थोड़ा सा रन करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से आइन को भी आप टाइम देंगे और मखरज को हिट करने के फौरन बाद आप लेटर को हिलाएंगे नहीं, ठीक है। जैसे आह आह, तो ये यूं नहीं होना चाहिए, आह आह, ये साउंड नहीं, पिच जो चेंज हो रही है ना आवाज की ये नहीं होना चाहिए। सेम इज विद द आइन, यानी आप जब आइन बोलेंगे तो आप यूं नहीं कहेंगे आ आ, 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 और ये आइन के अंदर कॉमन होता है, ठीक है, तो आपने इसको आ नहीं होने देना बल्कि आ आ, यानी आप उसको टाइम दें। बिल्कुल इसी तरह से जैसे वर्ड आता है या लेमून, तो आइन आपका हिलेगा नहीं, यानी आप उसको टाइम देंगे कि आइन के ऊपर आपने थोड़ी देर आवाज को होल्ड करना है, बहुत ज्यादा भी नहीं लेकिन थोड़ी देर होल्ड करना है, और ऐसा होल्ड करना है कि वो मूव ना करे, शेक ना करे, आपकी साउंड फौरन हिट होके मखरज को छोड़े नहीं, या लेमून यू नहीं बल्कि या लेमून। और बिल्कुल इसी तरह से हामे, जैसे हम वर्ड बोलते हैं अर्रहमान, तो अर्रह रह करके नहीं, ठीक है, यानी हिलना नहीं चाहिए आपका लेटर। तो ये जो है इसके अंदर साकिन में आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। फिर जैसे मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि बाकी जितनी तीन हरकात हैं तीनों के साथ आप इसको प्रैक्टिस करें, लाइक फिर आही, और मेक श्योर के जो ही है वो उसी पॉइंट से ओरिजिनेट हो जहां से साकिन, जहां पर आपने साकिन के लिए हिट किए, आहू, क्योंकि इसमें वही चीज आती है कि समटाइम्स आपकी कोई एक ऐसी हरका होती है जो स्ट्रांग नहीं हो पा रही होती, और अमूमन कसरा बम्मा थोड़ा टाइम लेते हैं, तो इसलिए मेक श्योर के जब आप साकिन के लिए हिट करे हैं और फिर मुतहर्रिक के लिए ओपन करे हैं, यानी आहा, तो आप उसी पॉइंट से लेकर आ रहे हैं साउंड, ठीक है। आइन के लिए कैसे आ, 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 फिर इसी तरह से आई, फिर इसी तरह से आऊ, और कोई भी साउंड इसकी हैवी नहीं होगी, ठीक है। आइन के अंदर समटाइम्स गुन्ना भी आने लग जाता है, आ आ, जब आप अंदर की तरफ साउंड को दबाते हैं तो वो थोड़ी नेजल साउंड देगी, यानी आ, ये साउंड नहीं होनी चाहिए बल्कि आ आ आ आई आऊ। आइन को हमजा के साथ प्रैक्टिस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसको किसी और लेटर के साथ प्रैक्टिस कर लें और फिर हमजा के साथ प्रैक्टिस करें, क्योंकि डेफिनेटली फाइनली आपको हमजा के साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि कुरान पाक में बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो हमजा आइन के कॉम्बिनेशन में है, और फिर इस कॉम्बिनेशन में है कि आपका हमजा मुतहरिक और आइन साकिन है, जैसे वर्ड आई लेमू, तो वो आ वाली साउंड आ रही है, आई ऊ तो आपको मिलेगा ही, लेकिन इवन हमजा मुतहर्रिक और आइन साकिन कॉम्बिनेशन भी आपको कुरान पाक में मिल रहा है, तो इसलिए आप इसको इसके साथ तो प्रैक्टिस करेंगे ही, लेकिन बिगिनिंग में चूंकि हमजा और आइन का मखरज बहुत क्लोज है तो ये मिक्स होने लग जाते हैं, तो आपको अगर डिफिकल्टी हो रही है इनको प्रैक्टिस करने में तो आप किसी लेटर और के साथ प्रैक्टिस कर लें, पहले आइन को स्ट्रांग कर लें फिर हमजा आइन इकट्ठा स्ट्रांग कर लें, लाइक या जैसे या ऊ, ठीक है, इस तरह से। ओके, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट लेटर है वो है, नेक्स्ट मखरज है वो है अदनल हलक, हलक का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, यहां से भी दो लेटर्स आते हैं, गैन एंड ख। हा आइन की निस्बत ये आसान है क्योंकि ग भी हम लैंग्वेज में बोलते हैं और ख भी, इंग्लिश में और उर्दू में दोनों में हम ये साउंड्स यूज कर रहे होते हैं, थोड़े थोड़े स्लाइट डिफरेंस के साथ, और इंशाल्लाह अरबिक में हम कैसे बोलते हैं विद परफेक्शन हम सीखेंगे। ये जो दो लेटर्स हैं ये हलक के सबसे ऊपर वाले हिस्से से आते हैं, हलक का सबसे ऊपर वाला हिस्सा हम इवन देख सकते हैं अगर हम मुंह को खोलें, यानी जरा वाइडर खोलें और मिरर के अंदर हम इसको देख सकते हैं, यानी हलक का आपको सबसे ऊपर वाला हिस्सा नजर भी आ रहा होता है। ये वो हिस्सा है जो कि टॉन्सिल्स के बिल्कुल पीछे, आप ये कह सकते हैं कि जो टॉन्सिल्स हैं और जो आपकी वोकल कॉर्ड है, जो एक छोटी सी बॉडी दो टॉन्सिल्स के बीच में लटक रही होती है वो आपकी वोकल कॉर्ड है, उस पार्ट से अगर आप अंदर की तरफ जाते हैं तो वो हलक का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, उससे पहले टंग एरिया है और उसके पीछे, यानी आप ये कह सकते हैं ऑन द बॉर्डर लाइन, ठीक है, उससे पीछे अंदर की तरफ थ्रोट है और उससे सामने की तरफ मुंह की जानिब टंग है। तो इसमें जो वो वाला पार्ट है, यानी जो आपके बिल्कुल टॉन्सिल्स के पीछे है, वहीं से ये साउंड आ रही होती है, इन दो लेटर्स की साउंड। कौन कौन से लेटर्स हैं? ख एंड व। इन लेटर्स को भी थोड़ा परफेक्ट करने के लिए हमें यानी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और अगर हम ख की साउंड को देखें तो ख की साउंड में और गैन की साउंड में जो मेन डिफरेंस आ रहा है वो ये कि ख को अदा करते हुए आपने एयर को बाहर की तरफ ब्लो करना होता है, जबकि गैन को अदा करते हुए आप एयर को कंट्रोल करते हैं। दैट्स द मेन डिफरेंस इन दीज टू लेटर्स। तो गैन के अंदर एयर नहीं है और ख के अंदर आप एयर ब्लो करते हैं। तो आप ख को कैसे बोलेंगे? अखो, अखी, अखो। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये देखा कि जब ख हरका के साथ आता है ना, तो उसकी आवाज कहीं गुम हो जाती है। लाइक वर्ड आता है जैसे खौलीदून, तो उसको अच्छी तरह ख जो उसकी साउंड आती है वो आती है लाइक खौलीदून, खौलीदून, तो वो कहीं गुम हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप उसे थोड़ा टाइम दें, यानी लेटर को प्रोमिनेंटली उसको अदा करें, उसके अंदर एयर ब्लो करें, उसके अंदर साउंड आपकी आनी चाहिए अच्छी सी, और फिर आप उसे हरका के साथ बोलेंगे लाइक खो खो, नॉट लाइक खो खो कि आपका लेटर कहीं स्किप हो रहा है, खोलीदून। और इसी तरह से गोइन के साथ कैसे? गोलीबून। अब आप देखें कि वो इसमें आपने एयर कंट्रोल कर ली, अब आपकी एयर बाहर नहीं आ रही, और खो कहते हुए आपकी एयर बाहर आ रही है, खो ओ। दैट्स अ डिफरेंस कि आपने खो में रन करना है एयर को, गैन में नहीं। अब अगर हम इसको हमजा के साथ प्रैक्टिस करें तो इसमें हम एक चीज का ध्यान और रखेंगे कि जितने पिछले लेटर्स थे ना वो सब लाइट थे, यानी जैसे हा है तो आहा, जैसे हा था तो आहा, आपने टंग स्ट्रेट रखी हुई है आ। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये है कि ख और गैन ये दोनों हैवी लेटर्स हैं। अब आपकी टंग स्ट्रेट नहीं होगी, लेटर्स तो थ्रोट से आ रहे हैं, इनिशियल पार्ट ऑफ थ्रोट से, लेकिन होगा क्या कि इसमें आपकी टंग भी स्ट्रेट नहीं होगी। इसमें आपका जो टंग का सबसे पीछे वाला हिस्सा है ना, ये थोड़ा ऊपर की तरफ उठेगा, मुंह के अंदर एक प्रेशर बिल्ड होगा और आपकी जो साउंड है वो बाहर की तरफ नहीं निकलेगी। जो प्रेशर है वो मुंह से डायरेक्टेड टुवर्ड्स माउथ तो होगा, लेकिन ये मुंह से बाहर नहीं निकलेगा, बल्कि फिर ये रूफ की तरफ चला जाएगा, आपके मुंह के छत की जानिब चला जाएगा। तो ये साउंड फिर ओ और खो, यानी आप इसे खालिदून या गालिबून नहीं पढ़ते, यानी गा गा यू नहीं, गो खो यू करके, ठीक है? डू नॉट मेक द सर्कल ऑफ योर लिप्स। फिर इसमें होता यह कि चूंकि आपका डीपेस्ट पार्ट ऑफ टंग ऊपर है, तो जब हम इसको हमजा के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका हमजा भी हैवी हो जाए, यानी साउंड यू आए ओ खो ओ। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि ये ओ नहीं होगा, यानी ओ साउंड नहीं आनी चाहिए, आ और खो, यानी ये जो डिफरेंस है ये आपने प्रैक्टिस के अंदर भी रखना है कि आपका फर्स्ट लेटर हमजा आ ओपन माउथ के साथ आना चाहिए, विदाउट कीपिंग द प्रेशर विद इन दी माउथ, और जो खो है या गैन है उसके लिए मुंह के अंदर प्रेशर रखेंगे, ठीक है? यानी अ खो, यानी आ लाइट और खो फिर हैवी, अ खो फिर अ खू फिर अ खी, ठीक है? फिर इसी तरह से हम गैन को अगर देखें तो गैन में हम क्या करेंगे, आ लाइट अगेन, यानी ओ साउंड नहीं आनी चाहिए। और यही चीज जब हम रीडिंग करेंगे तो उसमें भी ध्यान रखेंगे कि अगर पीछे वाला लेटर लाइट है तो गैन के या खौ के फैक्ट से वो हैवी ना हो। औ आ औ वो फिर औ फिर अवी, ठीक है। और इसमें आप इसको जैसे मैंने बताया वर्ड यो लीबून, तो इसमें ये साउंड नहीं आनी चाहिए, यो 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 नहीं, ठीक है, या ओ यो लीबून, इस तरह से हम इसको अदा करते हैं। ओके, ये इसकी कुछ चीजें होगी। फिर जैसे हमने आइन और हा में ये ध्यान रखा था कि जब लेटर साकिन होगा तो आपने उसको हिलने नहीं देना, उसके अंदर कलकला की आवाज ना आए। बिल्कुल सेम यहाँ पे भी है कि आप जब इन लेटर्स को प्रैक्टिस करेंगे तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि कलकला की आवाज ना आए, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि कलकला बास स्टूडेंट्स में हर लेटर में प्रोमिनेंट हो रहा होता है, यानी कोई भी आप लेटर बोले वो साकिन है तो उसमें उनका कलकला आ रहा होता है। बास स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका हर लेटर में नहीं होता मगर कुछ लेटर्स में हो रहा होता है, जैसे मैंने आपको बताया आइन का, आइन में बहुत कॉमन एरर आता है इस कलकला का, फिर इसी तरह से गइन का। तो ये आपने ध्यान रखना है कि अगर आप इसको साकिन सुकून के साथ बोल रहे हैं तो आपका जो कलकला है वो इन लेटर्स में नहीं आना चाहिए। जैसे अ, तो आप साउंड को क्या करेंगे, रन करेंगे, अ वो यू नहीं, अ वो यानी हिट करने के फौरन बाद आपने साउंड को पलटाना नहीं है, बिल्कुल इसी तरह से अ साउंड आपकी एकदम मूव नहीं करेगी। जैसे या लीबून के अंदर गइन साकिन था, अगर हम इस वर्ड को बोले तो या लाइट गइन हैवी विदाउट कलकला, या लीबून यो लीबून यू नहीं, यो लीबून यो, ये फिर बाउंस के अंदर कलकला के अंदर आ जाएगा। फिर इसी तरह से अगर हम खौ को देखें तो वर्ड खौ में जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्ड आता है अखलद या यखलुदु, तो इसके अंदर आपकी साउंड यखो नहीं होनी चाहिए, यखो ये जो पिच चेंज हो रही है ना, दैट्स कलकला, यखलुदु यानी पूरी तरह रन करें साउंड को, साउंड मखरज पे खत्म करें फिर आप मोशन लें नेक्स्ट लेटर के लिए। अगर आप यूं करते हैं यखोलुदु यखो, यानी आप रन तो कर रहे हैं मगर एट दी एंड साउंड हिल रही है, तो वो भी दुरुस्त नहीं है। पहले आप मखरज को हिट करें, साउंड को रन करें, अगर उसमें कलकला नहीं है तो आवाज मखरज पर ही खत्म करें और फिर नेक्स्ट लेटर के लिए मूव करें, यखलुदु, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे सिक्स कौन से लेटर्स थे, हरूफुल हलकिया। इनको हलकिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हलक से आते हैं, तीनों ही हलक से आ रहे हैं, इसलिए हम इन्हें हरूफुल हलकी या हरूफुल हलकिया कहते हैं। ये समझ में आ गया, यहां से इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो कर लीजिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसी तरह से आगे अगर हम चलें तो अब हमारा जो मखरज शुरू होगा, दो मेन एरियाज हम पढ़ चुके हैं, एक अलजौफ दूसरा हलक, ठीक है, हमने कहा था ना फाइव मेन एरियाज हैं और इन दो मेन एरियाज से कितने मखारिज आए, चार, एक अलजौफ का मखरज, अलजौफ में एक ही मखरज है, और तीन हरूफ अलहलक के मखरज यानी हलक के डिफरेंट थ्री पार्ट्स, तो चार मखारिज हम पढ़ चुके हैं दो मेन एरियाज में से। अभी हमारे कितने मेन एरियाज रह गए, वापस पीछे कितने मेन एरियाज रह गए, टोटल कितने थे, जी बिल्कुल थ्री हमारे रह गए हैं, टोटल हमारे पास फाइव मेन एरियाज थे। जी इन फाइव मेन एरियाज में से 17 मखारिज हम पढ़ेंगे, तो फाइव मेन एरियाज में से अलजौफ और अलहलक हम पढ़ चुके हैं, आज हम थर्ड वन स्टार्ट करेंगे व्हिच इज द लॉन्गेस्ट वन, बहुत सारे सब मखारिज इस एरिया में से आते हैं, और ये कौन सा है, अलिसान, बिल्कुल टंग सबसे ज्यादा यानी मखारिज और हरूफ हमारे पास लिसान से आते हैं, इंशाल्लाह हम इन्हें काउंट करेंगे बट लेटर, ठीक है। अलिसान आप ना अगर एक पेज के ऊपर ओवल सी शेप ड्रॉ करें तो हम इसके पार्ट्स देख लेते हैं कि मेन कितने पार्ट्स हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जिनको हम इंशाल्लाह इसके अंदर डिस्कस करेंगे, फिर हम वन बाय वन करके इसको पढ़ेंगे। तो अगर आप ओवल शेप लाइक अ टंग अगर ड्रॉ करें तो वो जबान का हिस्सा जो के टॉन्सल्स के पास है, ठीक है, यानी मैंने आपको बताया ना टॉन्सल्स लाइक अ बॉर्डर लाइन, उससे पहले जो जबान का हिस्सा आपका आ रहा है बिल्कुल डीप पार्ट, जबान को तीन इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, वो ओवल शेप बना के तीन इक्वल पार्ट्स बना दें। तीन इक्वल पार्ट्स में से सबसे पीछे वाला हिस्सा है जो हलक के पास है, उसको हम कहते हैं अकसर लिसान, अकसर लिसान जी, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग। जो सेंटर वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं वसतुल लसान, मिडिल पार्ट ऑफ द टंग। और जो सामने का हिस्सा है मुंह की जानिब का, उसको हम कहते हैं अदनल लसान, और एक्चुअली हम अदनल लसान इस्तेमाल नहीं करते लेटर्स के अंदर, तो बिल्कुल शार्प टिप ही यूज करते हैं, टिप टॉप यूज करते हैं, वो हम देखेंगे कि उसको क्या कहते हैं, लेकिन पूरे एरिया को हम अदनल लिसान कहेंगे। फिर एक बॉर्डर लाइन आपने ड्रॉ की है ना, आपने जबान की एक बॉर्डर लाइन ड्रॉ की है, साइड्स हैं जो जबान की। याद रखें कि जब मैं साइड्स कहती हूं तो आपके माइंड में आना चाहिए सारी बॉर्डर लाइन जो आपने ड्रॉ की है, यानी आपने जो मैंने आपको कहा ना ओवल शेप ड्रॉ करें, तो जो आपकी पेंसिल है उससे जितनी भी लाइन ड्रॉ हुई है वो सब टंग की साइड है, साइड नॉट इन अ सेंस के आपके अतराफ लाइक राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, नहीं, इवन जो फ्रंट के ऊपर आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यू कर्व सा बना रहे हैं वो भी, जो आखिर वाला हिस्सा है ना जो अकसर लिसान के साथ आप बॉर्डर लाइन बनाते हैं ये जुड़ी हुई होती है, ये फ्री नहीं है, बाकी टंग की सारी साइड्स जो हैं वो फ्री हैं, आप टंग को हिला सकते हैं ना, यानी आपकी राइट साइड लेफ्ट साइड जो फ्रंटल साइड्स हैं टंग की वो सारी फ्री हैं, लेकिन जो पीछे वाली साइड्स हैं वो आपकी अटैच्ड हैं समवेयर, तो इसलिए हम उनको नहीं उनको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो लेटर को बोलने में नहीं आ रही, लेकिन बाकी जितनी भी साइड्स हैं उनको हम कहते हैं हाफतुल लिसान। एक्चुअली तरफ का जो वर्ड है ना वो टिप के लिए बोला जाता है, ये उर्दू से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, हम उर्दू में कहते हैं ना अतराफ साइड्स को कहते हैं, मतलब अतराफ उस सेंस में, लेकिन हम अरबिक में इसको कहते हैं हाफा, साइड्स जो हैं जो आपने पेंसिल से ड्रॉ की वो सब साइड्स हैं जी, नहीं जितना भी आपने, हाँ जी जितना भी आपने पेंसिल से ड्रॉ किया ना, जो राइट साइड लेफ्ट साइड और फ्रंट एरिया जो आपने फ्रंट पे कर्व बनाया है, बैक एरिया मैंने आपको बताया कि वो अटैच होता है वो फ्री नहीं है, तो ये जितना भी एरिया आपने सामने से बनाया ना, जैसे आप कह लें एक उल्टा यू बना लिए, तो ये सारी की सारी आपकी साइड है, ये सारी की सारी आपकी हाफ है, सही। तो ये पार्ट्स हैं टंग के जिसके अंदर हम इंशाल्लाह डिफरेंट मखारिज पढ़ेंगे, अकसल लिसान, वसतुल लिसान, अदनल लिसान एंड हाफतुल लिसान जी। अदनल लिसान को हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे ना, जब हम इसके ऊपर आएंगे तो फिर हम देखेंगे कि अदनल लिसान, अदनल लिसान जब आपने टंग को थ्री इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया ना, तो जो सबसे फ्रंट वाला एरिया है वो अदनल लिसान है, पूरा अदना जो है पूरा एरिया हम लेटर्स को बोलने में इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ टिप एंड टॉप करते हैं, ठीक है, सिर्फ टिप एंड टॉप लेटर्स को बोलने में इस्तेमाल करते हैं, वो हम इंशाल्लाह अभी डिस्कस करेंगे जब हम वहां तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अकसर लिसान, डीपेस्ट पार्ट ऑफ टंग, डीपेस्ट पार्ट ऑफ टंग से मखारिज ओरिजिनेट होते हैं। एक है मखरजुल कौफ और एक है मखरजुल काफ। सही। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से नोट डाउन कीजिए। आप देखें कि हमने हलक जब पढ़ा तो हमने कहा अकसल हलक से एक मखरज है, उससे दो लेटर्स आ रहे हैं, एग्जैक्ट सेम पॉइंट से दो लेटर्स आ रहे हैं। लेकिन जब हम अकसल लिसान पे आए तो हमने क्या कहा, अकसल लिसान से दो मखारिज ओरिजिनेट हो रहे हैं, नॉट टू लेटर्स फ्रॉम द सेम मखरज। ओके, हम ये नहीं कह रहे कि दो हरूफ एक ही मखरज से आ रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, दो मखारिज से दो डिफरेंट हरूफ आ रहे हैं। सो अगर हम मखारिज काउंट करें तो हमने अलजौफ पढ़ा, अकसल हलक, वसतुल हलक, अदनल हलक, फोर मखारिज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिफ्थ और सिक्स्थ मखरज, ये हमारा कहाँ आ रहा है, अकसल लिसान में, मखरज नंबर 5 एंड मखरज नंबर 6, ये भी हम डिस्कस करते हैं। कौन कौन से मखारिज, एक मखरज कौफ का और एक मखरज काफ का, ये दोनों लेटर्स सेम आर्टिकुलेशन पॉइंट शेयर नहीं करते, थोड़ा थोड़ा फर्क आ रहा है। अब अकसल लिसान में अगर हम देखें, सबसे पहले कौफ का मखरज, टू डॉट्स जिसके ऊपर होते हैं, ये लेटर आता है जब डीपेस्ट पार्ट ऑफ टंग, आपका अकसल लिसान, सॉफ्ट पैलेट से टच करता है, तालू के नरम हिस्से से टच करता है। अब दैट्स रियली इंपॉर्टेंट टू नो कि तालू कहाँ है और तालू का नरम हिस्सा कहाँ है। जैसे हमने टंग के पोर्शंस किए ना, हम ऐसे ही रूफ के भी पोर्शंस बनाते हैं, ठीक है, जो आपके मुंह का छत है उसके पोर्शंस बनाते हैं। अब इसके लिए आपको ना थोड़ी सेंसेशंस इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। आप अपनी टिप को बिल्कुल गम लाइन पर रखें, जहां पे आपके सामने वाले दो दांत ज्वाइंट हैं वहां पे रखें, और बिल्कुल हल्का हल्का आप इसको ना सेंस के साथ, कि आप सेंस करें कि आपका रूफ किस तरह से बना हुआ है, स्ट्रक्चर क्या है उसका, इसको सेंस करते करते जरा आप पीछे लेकर जाएं, जितना पीछे आप लेकर जा सकते हैं ना, इतना पीछे लेकर जाएं कि आपकी टंग हर्ट होना शुरू हो जाए। अब अगर इसको मैं ऐसे डिस्क्राइब करूं कि शुरू में अबाउट एन इंच पार्ट आपका स्ट्रेट है, फिर उसके बाद आपका कर्व सा बना हुआ है, केव है, केव टाइप शेप है, कर्व है, डोमी एरिया कह लें, यू अंदर गहराई की तरफ जा रहा है, एम आई राइट, ऐसे ही है सबका, ऐसे ही है कि इज देयर एनी एक्सेप्शनल केस, अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो इसके बाद जब आप और ज्यादा रोल करते हैं तो आपको लगता है कि वो कर्व जो है वो वापस, जैसे वो यू शेप मैंने आपको बताया ना, उस तरह की एक शेप है, अंदर गहराई की तरफ जाती है और फिर वो वापस ऊपर की तरफ आती है, और बिल्कुल एंड में जब आपकी टंग, आप इतना अगर उसको रोल कर रहे हैं कि वो हर्ट होने लग जाए, तो आपको एक बहुत सॉफ्ट एरिया सा फील होना शुरू हो जाता है, बहुत एंड के ऊपर लेकर जाएं, तो आप सबको वो सॉफ्ट एरिया थोड़ा फील हो रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अब इसमें जो फ्रंटल आपका एक स्ट्रेट पार्ट है ना, जो शुरू का एक स्ट्रेट सा एरिया है, तकरीबन 1 इंच का बन रहा है, ये आपका है गम एरिया, इसको हम कहते हैं गम्स। गम सिर्फ वहां तक नहीं होते जहां पर आपके दांत जुड़े हुए हैं, यानी वो एक गम लाइन जो है, सिर्फ वो गम एरिया नहीं है, बल्कि जितना दांत का साइज अंदर होता है ना, इतना दांत का साइज, सॉरी, जितना बाहर आपको नजर आ रहा होता है ना, ऑलमोस्ट इतना ही दांत का साइज अंदर भी होता है। तो जहां तक वो टीथ की रूट्स होती है ना, वहां तक आपका गम एरिया जाता है। तो ये जो स्ट्रेट पार्ट है ना, ये सारा गम एरिया है। फिर वो जो डोमी पार्ट है, वो आपका हार्ट पैलेट है, जो कर्व सा बना हुआ है, जहां से शुरू हो रहा है वहां से लेकर सॉफ्ट पैलेट से पहले पहले तक, वो नरम एरिया जो आपने फील किया उससे पहले पहले तक, ये सारा आपका क्या है, हार्ट पैलेट, सख्त तालू। और फिर जो बिल्कुल एंड में पार्ट आ रहा था वो क्या था, सॉफ्ट पैलेट, ठीक है, वो नरम आपका तालू था। अच्छा, आप सबने इसको टंग से सेंस किया, आप इसको ना थंब से भी सेंसेशंस ले सकते हैं। यानी आप अपने टंग, अगर आपको टंग से नहीं फील होता तो आप थंब को ऊपर रन करें, मतलब ऊपर वाले पार्ट के ऊपर, तो आप उससे भी इसकी सेंसेशंस ले सकते हैं। इफ यू डोंट फील वॉमिटिंग, तो फिर आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। इसमें फिर ये है कि जो वो सॉफ्ट पैलेट है ना, टंग को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, और फिर उस सॉफ्ट पैलेट को ना स्ट्रेट टंग के पार्ट के ऊपर हिट करने की कोशिश करें। यानी आप, टंग आपकी स्ट्रेट है, बस आप उसको ऊपर पीछे से ऊपर उठा के उस सॉफ्ट पैलेट को हिट करने की कोशिश करें, जस्ट टू सेंस के इसके पैरेलल पार्ट ऑफ टंग कौन सा आ रहा है। समझ आई मेरी बात, कि आपने टंग को कर्व नहीं करना, स्ट्रेट टंग रखें, स्ट्रेट रख के आप वो जो आपने सॉफ्ट पैलेट सेंस किया है ना, उसको टंग के किसी पार्ट को जो कि बिल्कुल उसके पैरेलल है, स्ट्रेट जो बिल्कुल डाउन उसके पार्ट आ रहा है, वो आप ऊपर जरा उसको टच करके सेंस करें कि लेटर के लिए हम कौन सा पार्ट ऑफ टंग या कौन सा एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ अकसर लिसान इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अकसर लिसान तो आप देखिए काफी बड़ा सा एरिया है ना, आपने जो पेपर पे ड्रॉ किया तो आप देखिए वो काफी एरिया है एक, यानी आई मीन इट्स नॉट ओनली वन सिंगल पॉइंट, एक काफी बड़ा सा एरिया, तो उस एरिया में से कौन सा हिस्सा जाके टंग को ऊपर सॉफ्ट पैलेट को लगेगा, ये भी आपने फील करना है। अब आपने उस टंग के हिस्से को ऊपर टच करना है स्ट्रांगली, जब आप इसको स्ट्रांग हिट देंगे तो ये साउंड आएगी आपको, तो ये साउंड आएगी तो, ठीक है। ये जो लेटर है ये अरबिक में टू डॉट्स वाला लेटर है, जो कि हम अपनी बाकी जबानों में इस्तेमाल नहीं करते, सो इट्स अगेन अ हार्ड लेटर, ठीक है। अब जब आप एग्जैक्ट उस पॉइंट पे हिट करते हैं ना, तो आपकी साउंड अच्छी स्ट्रांग आनी चाहिए। इसका हिट ऐसे होता है जैसे अभी तक हमने इसके हिट का एक लेटर पढ़ा है, विच इज हमजा। हमजा में एक बहुत स्ट्रांग हिट होता है, साउंड बिल्कुल बंद हो जाती है, लाइक यानी ये एक स्ट्रांग हिट है। और अब हम जो कॉफ पढ़े हैं ये भी वैसे ही हिट है। इस हिट को अगर ये कहा जाए इट्स हिट लाइक अ हिट ऑफ अ बॉल, तो ये गलत नहीं होगा। कि जैसे आप बॉल को फ्लोर पे फेंके ना, तो वो क्या करती है, टच करके फॉरन बाउंस बैक करती है, वहां पे रन नहीं करती, या आपको रनिंग साउंड नहीं आती, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग हिट की आवाज आती है। जैसे आप टेबल को फ्लोर पे यूं पुश करते ना, तो आपको एक रनिंग सी साउंड आती है, आपको ऐसी साउंड नहीं आती, ये आपको रनिंग साउंड मिलती है हा में जब आप ओ बोलते हैं, अ में या अख में, ये आपको रनिंग मिलती है, वो वाली साउंड ना। लेकिन इस लेटर में आपको बॉल के हिट की साउंड मिलती है, एक आवाज आती है, आवाज दोबारा पलट कर नहीं आती। अगर आप यूं बोलते हैं खो खो, इट्स नॉट ए राइट साउंड। और इस साउंड के अंदर एक्चुअली आपके सॉफ्ट पैलेट के साथ आपका हार्ड पैलेट इन्वॉल्व हो रहा होता है, इस वजह से ये साउंड आती है खो खो। नहीं, गो अ लिटिल बिट मोर बैक, मोर टुवर्ड्स थ्रोट, तो ये कैसी साउंड है, खो आपको, आप इसको फील करें कि ये एक हिट की साउंड है, इसके अंदर कोई रबिंग, कोई खराश, कोई रनिंग नहीं आ रही, ठीक है। आपको, कोलू, आपको, आपको, अक्की, दिस टाइप ऑफ साउंड. तो ये जो साउंड है ये ऑफ की है. मेरा ख्याल है कि अगर आप मखरज को एक दफा जज कर लें, सेंस कर लें, तो इसकी साउंड के अंदर ज्यादा इश्यूज नहीं रहते. मतलब साउंड बहुत स्मूथली आ जाती है, मखरज से ओरिजिनेट हो जाती है. सही. अब अगर हम लेटर काफ को देखें, तो लेटर काफ जो है वो आता तो अकसर लिसान से है, मगर अकसर लिसान जब अपने पैरेलल पार्ट ऑफ हार्ड पैलेट को टच करेगी तब ये साउंड आएगी. अब सॉफ्ट पैलेट नहीं जाना, आप सॉफ्ट पैलेट से थोड़ा सा आगे आ जाएं मुंह की जानेब. अब हम कहां हिट करेंगे, हार्ड पैलेट पे. जब हमने पैलेट को चेंज किया, यानी सॉफ्ट से हार्ड पैलेट पे आगे, तो अकसर लिसान में भी जो पॉइंट एग्जैक्टली कॉफ के लिए हिट हुआ था, अब वो टंग का एरिया नहीं हिट हो रहा, थोड़ा सा आगे वाला एरिया हिट हो रहा है. जबान का भी पॉइंट चेंज होगा, लेकिन याद रखें कि जबान के पॉइंट चेंज होने से ये मखरज चेंज नहीं हो रहा. ठीक है. जब तक आप अकसर लिसान के अंदर है ना, उस बॉर्डर लाइन के अंदर है, जब तक मखरज एक ही होना चाहिए. ये जो मखरज हमने मखरज की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी ना, मखरज नंबर 5 एंड मखरज नंबर 6, ये हमने क्यों की है, सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट के चेंज होने से. सॉफ्ट पैलेट एरिया चेंज हो गया, हार्ड पैलेट चेंज हो गया, इसकी वजह से हमने इनको एक मखरज से आउट कर दिया. हमने कहा कि ये शेयर नहीं करें सेम मखरज. ये बात समझ में आई आपको कि ये जो स्लाइट स्लाइट डिफरेंस टंग का आ रहा है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता. ये हम स्लाइट डिफरेंस इंशाल्लाह वैसे तो लसान में भी देखेंगे. टंग का हल्का 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 डिफरेंस आता है. हर लेटर के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट एक पॉइंट ऑफ टंग नहीं इस्तेमाल हो रहा होता, लेकिन समटाइम्स वो सारे लेटर्स एक मखरज से आ रहे हैं. तो इसमें ये जो टंग का हल्का सा फर्क पड़ा है, इससे मखरज नंबर 5 और मखरज नंबर 6 नहीं बना. मखरज नंबर 5 और मखरज नंबर 6 कहां से बना है, सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट के चेंज होने से. वो एक एरिया चेंज हो गया. अब सॉफ्ट पैलेट की बॉर्डर लाइन से निकल के अब हार्ड पैलेट की बॉर्डर लाइन में आ गए, वो एक पूरा एक एरिया चेंज हो गया ना, जिसकी वजह से आपका मखरज कॉफ का और काफ का चेंज हो गया. सो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ऑलवेज कॉफ एंड काफ एक मखरज से नहीं आते, अक्सर लिसान से आते हैं, मगर इनके मखारिज डिफरेंट हैं. अच्छा, अब हम काफ को देखते हैं. तो काफ जो है वो अकसर लिसान जब हार्ट पैलेट के साथ हिट करेगी, तो ये साउंड आएगी आपकी काफ की. अब काफ के अंदर ये होता है कि जो हम उर्दू में काफ बोलते हैं ना, अरबिक का काफ थोड़ा सा उससे डिफरेंट है. अरबिक के काफ की साउंड इंग्लिश के सी की साउंड से मिलती जुलती है. ठीक है. नॉट के साउंड, के साउंड होती है एग्जैक्टली लाइक की. ये हम उर्दू में बोलते हैं काफ के लिए. हमारा उर्दू का काफ और इंग्लिश का के सेम है, लेकिन अरबिक का काफ के इक्वलेंट नहीं आता, बल्कि वो ऑलमोस्ट सी की तरह साउंड देता है. लाइक जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, सी फॉर कैट, यानी जो ख साउंड है ये उसके अंदर अरबिक के काफ के अंदर होती है. ये इसकी कुछ क्वालिटीज की वजह से है, जिसको हम इंशाल्लाह लेटर ऑन ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे. तो आप अरबिक में काफ को कैसे बोलेंगे, जैसे बिल्कुल आपने इसको अक्का के साउंड नहीं देनी, अक्का अक्की अक्कू नहीं, थोड़ी एयर के साथ अच्छा हिट करे. आपका हिट अच्छा होना चाहिए. जब आप फतहा के लिए खोलते हैं ना, उस खोलने में आपने एयर निकालनी है. अक्का का अक्की अक्कू अक्कू अक्की अक्का. याद रखिए, ये साउंड उर्दू के खे से भी नहीं मिलती, रिमेम्बर दिस, हम उर्दू में एक वर्ड बोलते हैं खे, जैसे खेल है, खेल, ये खेल की वाली आवाज नहीं है। काफ, क्योंकि खे के अंदर हम ना हे ऐड करते हैं, तो हम अरबिक में खा नहीं बोलेंगे, खा, खी, खू, नहीं। ये क्या साउंड है? का, की, कू, का, की, कू। बहुत स्लाइट डिफरेंस है, लेकिन आपने इसको अचीव करने की कोशिश करनी है। नॉट इवन का, नॉट इवन खा, इन दो साउंड्स के बीच में। का, की, कू, का, की, कू, ठीक है? एक अच्छे हिट के साथ आपने एयर ब्लो करनी है। आपका हिट वीक है तो साउंड आएगी खा, खी, खू। आपका हिट बहुत शदीद है और एयर नहीं आप निकाल रहे, तो वो साउंड आएगी का, की, को, नहीं, का, ठीक है? अका, अकी, अकू, इस तरह से। और इन दो लेटर्स को हम कहते हैं कॉफ और काफ। कॉफ, देखिए नाम भी इनका सेम है, आते भी सेम पार्ट ऑफ टंग से, आपका लसान से आते हैं, नाम भी इनका सेम है, मगर इनके मखारज डिफरेंट हैं, ठीक है? कॉफ का मखरज काफ से डिफरेंट है। ओके, इनको हम क्या कहते हैं? हरूफुल लहविया। लहव जो है वो आप कहते हैं वोकल कॉर्ड को, जो टॉन्सिल्स के बीच में एक लंबी सी बॉडी लटकती होती है ना, ये वोकल कॉर्ड है जो कि आवाज को पैदा करती है। इसकी वाइब्रेशन से, इसके इर्तियाश से आवाज पैदा होती है, तो इसको हम कहते हैं लह अरबिक में। क्योंकि ये दोनों लेटर्स इसके करीब से आते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? हरूफुल लहविया। सो आज हमने चार मखारिज पढ़े, वसतुल हलक, हम आइन हा, अदन अल हलक, वइन खा, अकसर लिसान से दो, कॉफ एंड काफ, सही। अब हम थोड़ी सी इंशाल्लाह रीडिंग कर लेते हैं। मेरे ख्याल है हमने सूरत नबा शुरू की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी तक हमने एक ही पार्ट लसान का किया है, विच इज अकसर लसान। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम अब वसत लसान शुरू करेंगे, ठीक है? आप अपने अपने हैंड रेस कर लीजिए जिन्होंने आज सुनाना है सबक। जी बिल्कुल, हिट आपका स्ट्रांग होता है काफ में और एयर ब्लो होती है। इसमें ये होता है कि जब आप हरका वाला काफ बोलते हैं ना, तो पहले आप यूं जबान लगाएं अट, यानी, और फिर जब आप अलग करते हैं ना पार्ट को, का, जब वो सेपरेशन आ रही है हार्ट पैलेट में और अकसर लिसान में, जब वो सेपरेशन आ रही है उस वक्त एयर ब्लो करें, का, की, कू, इस तरह से। और जब ये साकिन होता है, तो पहले आप हिट करते हैं, फिर 1 सेकेंड पॉज के बाद आप एयर ब्लो करें, अक, ठीक है? इसका फ्रॉम हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट ऑफ द टंग प्लीज। एक्चुअली हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट ना रूफ में है, टंग में नहीं है। टंग का जो पार्ट यूज होगा वो अकसल लिसान होगा, और पॉफ जो है वो आता है सॉफ्ट पैलेट से, और काफ जो है वो आता है हार्ड पैलेट से। यानी जो थोड़ा सा मुंह की जानेब है ना, रूफ का हिस्सा, वहां से। समझ आई आपको बात? जी, आमीन भैया को, ठीक है? और कोई सवाल? ओके, सही, ठीक है। आज कौन सा सबक सुनाएगा? आई थिंक मैंने आपको कुछ हिस्सा पढ़ के दिया था, बट आई डोंट रिमेम्बर कि सूरतुल मुल्क से या नबा से। काफ सॉफ्ट पैलेट से, और कॉफ जो आप क्यू से लिख लें वो ज्यादा बेहतर होगा, कॉफ जो है वो हार्ड पैलेट से। ओके, सूरत नबा आया ना 1 to 9, सही। सुनाएगा कौन आज? हैंड रेज कर लीजिए। जी इंशाल्लाह मैं माइक छोड़ती हूँ, आप पढ़िए इनायत को।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أدا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. صدق الله العظيم.
जी जजाक अल्लाह खैरा। जी इट्स गुड माशाल्लाह तबारक अल्लाह। थोड़ा सा अभी ना आपने मखरज ऑफ आइन के ऊपर प्रैक्टिस रखनी है, ठीक है। कुछ कुछ जगह के ऊपर लगा, जैसे अल्लाह, तो ये हमजा से अलग था, यानी आपका यहाँ पर आई ना सयालमून, तो कुछ कुछ जगह के ऊपर वो बेहतर आ रहा था, लेकिन वर्ड आउजु यहाँ पर अभी इसको मजीद थोड़ा स्ट्रांग हिट की जरूरत है कि ये आऊ यानी हमजा की तरफ जा रहा था। आऊ आऊजु जब हम पढ़ेंगे वर्ड आम्मा, तो मेक श्योर के पहले आइन की साउंड आए, आ और फिर मीम आम्मा, फिर इसी तरह से आनीन, और इस हमजा को रिलैक्स रखें, बहुत ज्यादा दबाएंगे नहीं, ठीक है। आप अगर इसको हल्का सा भी हिट कर देना मखरज को तो साउंड अच्छी आ जाएगी। नबई आनी नबईल, तो आइन के ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है, और नबई में हमजा के ऊपर, फिर याए नंबर 5 में इसमें आपका कल्ला का जो अलिफ है ये थोड़ा शॉर्ट हो गया था, इसको हम 2 हरकात खींचेंगे। कल्ला सयालमून, फिर काफ जो है ना वो जैसे व खलकना कुम कुम, इसमें एयर नहीं आई, नऊमकुम यहाँ पर भी यानी के साउंड में जा रहा था, कुम कुम नहीं खु खु साउंड आउटवर्ड, व खलकनाकुम अज़वाजा नौमकुम सुबाता, ठीक है, इस तरह से इंशाल्लाह। जी बिल्कुल जज़ाकअल्लाह खैरा। ओके इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ना मैं पहले लिसनिंग करूंगी, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि ये थोड़ा सा ना इफेक्ट हो रहा है। इंशाल्लाह आप लोग तैयार रहिएगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास में पहले आपसे सबक सुनूंगी और फिर मैं इंशाल्लाह लेसन कराऊंगी। और नेक्स्ट वीक के लिए मैं आपको आयात दे देती हूँ, मैं पढ़ देती हूँ, आप इंशाल्लाह इनको सुन लीजिए, फिर इन्हें प्रैक्टिस कीजिएगा। आई नंबर अल्हम्दुलिल्लाह आई नंबर 10 से लेकर 16 तक। इंशाल्लाह أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن شاء الله أبتدي ठीक है नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मुलाकात करते بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته